नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9 Nuttery के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, फॉस्टर प्रोवोस्ट और टॉम फॉसेक की पुस्तक डेटा साइंस फॉर बिजनेस। डेटा माइनिंग और डेटा एनालिटिक थिंकिंग को व्यावसायिक निर्णयों के संदर्भ में समझाने वाली गैर कथा पुस्तक है। इसका उद्देश्य पाठक को प्रोग्रामिंग सिखाना या किसी एक सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण देना नहीं है। इसके बजाय यह बताती है कि किसी संगठन में डेटा से उपयोगी ज्ञान निकालने के लिए सही प्रश्न, सही मापदंड और सही कार्य प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। पुस्तक का केंद्रीय विचार डेटा एनालिटिक थिंकिंग है, अर्थात व्यावसायिक समस्या को इस तरह परिभाषित करना कि डेटा उसके समाधान में वास्तविक योगदान दे सके। लेखक समझाते हैं कि डेटा को केवल तकनीकी उपोत्पाद नहीं बल्कि निवेश और प्रबंधन योग्य व्यावसायिक परिसंपत्ति मानना चाहिए। वर्गीकरण, प्रतिगमन, क्लस्टरिंग, समानता और मॉडल मूल्यांकन जैसे विषयों को व्यावहारिक भाषा में रखा गया है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के MBA शिक्षण अनुभव से विकसित यह पुस्तक प्रबंधकों, विश्लेषकों और डेटा वैज्ञानिकों के बीच अधिक सटीक संवाद की साझा बुनियाद बनाने का प्रयास करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डेटा एनालिटिक थिंकिंग तकनीक से पहले समस्या को सही ढंग से गढ़ने की क्षमता। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान डेटा एनालिटिक थिंकिंग की अवधारणा है। इसका अर्थ केवल उपलब्ध डेटा पर एल्गोरिदम चलाना नहीं, बल्कि व्यावसायिक उद्देश्य, निर्णय और मापे जा सकने वाले परिणाम के संबंध को स्पष्ट करना है। उदाहरण के लिए, ग्राहक छोड़कर जा सकते हैं, यह जानना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह हो सकता है कि किन ग्राहकों के छोड़ने की संभावना है, किन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप करना लाभकारी होगा और उस हस्तक्षेप की लागत कितनी है। इस अंतर से स्पष्ट होता है कि डेटा विज्ञान की शुरुआत मॉडल चयन से नहीं, समस्या निर्माण से होती है। लेखक यह भी रेखांकित करते हैं कि डेटा से संबंध दिख सकता है पर उसका व्यावसायिक अर्थ स्वतः सिद्ध नहीं होता। इसलिए विषय विशेषज्ञता, निर्णय की समय सीमा और कार्रवाई की क्षमता को विश्लेषण के साथ जोड़ना पड़ता है। यह दृष्टि अधिकारियों को डेटा वैज्ञानिकों से बेहतर प्रश्न पूछने में मदद करती है और तकनीकी टीमों को ऐसे समाधान बनाने की दिशा देती है जिन्हें संगठन वास्तव में इस्तेमाल कर सके। इस प्रकार पुस्तक डेटा विज्ञान को अलग तकनीकी विभाग की गतिविधि मानने के बजाय निर्णय प्रक्रिया का अनुशासित विस्तार मानती है। दूसरा, डेटा को व्यावसायिक परिसंपत्ति मानना और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए निवेश करना। प्रोवोस्ट और फॉसेक के अनुसार डेटा का मूल्य अपने आप में नहीं बल्कि उससे बेहतर निर्णय लेने की संगठन की क्षमता में निहित है। बहुत अधिक डेटा जमा कर लेना उपयोगी नहीं होगा यदि वह निर्णय से जुड़ा, पर्याप्त गुणवत्ता वाला, सुलभ और जिम्मेदारी से प्रबंधित ना हो। पुस्तक इसीलिए डेटा को व्यावसायिक परिसंपत्ति के रूप में देखने का आग्रह करती है। परिसंपत्ति की तरह इसमें संग्रह, गुणवत्ता, रखरखाव, पहुंच और उपयोग के लिए निवेश तथा शासन की जरूरत होती है। किसी कंपनी के पास ग्राहक व्यवहार, लेनदेन या परिचालन से जुड़ा डेटा हो सकता है, लेकिन यदि लक्ष्य संकेतक गलत हो या डेटा पक्षपाती और अधूरा हो तो मॉडल आकर्षक दिखने पर भी नुकसानदेह निर्णय दे सकता है। लेखक यह भी संकेत देते हैं कि लाभ केवल एक बेहतर मॉडल से नहीं आता। बेहतर डेटा, सक्षम डेटा विज्ञान टीम, प्रयोग करने की क्षमता और परिणामों को कार्य प्रवाह में लागू करने की व्यवस्था मिलकर मूल्य बनाती है। यह दृष्टिकोण उन प्रबंधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डेटा परियोजनाओं को केवल IT खर्च समझते हैं। पुस्तक उन्हें समझाती है कि टिकाऊ लाभ तब बनता है जब डेटा संग्रह और विश्लेषण संगठन की विशिष्ट निर्णय क्षमता को लगातार मजबूत करें। तीसरा, व्यावसायिक प्रश्नों को वर्गीकरण, प्रतिगमन और क्लस्टरिंग कार्यों में बदलना। पुस्तक कई डेटा माइनिंग कार्यों को व्यावसायिक समस्याओं की भाषा से जोड़ती है। वर्गीकरण का उपयोग तब होता है जब किसी इकाई को निश्चित श्रेणियों में रखना हो, जैसे किसी ग्राहक के सेवा छोड़ने की संभावना का अनुमान। प्रतिगमन तब उपयोगी है जब परिणाम एक संख्यात्मक मात्रा हो, जैसे संभावित बिक्री या अनुमानित खर्च। समानता आधारित तरीके नए मामले की तुलना पहले देखे गए मिलते जुलते मामलों से करते हैं। क्लस्टरिंग में पहले से तय लक्ष्य नहीं होता बल्कि डेटा में स्वाभाविक समूह खोजे जाते हैं, जैसे अलग व्यवहार वाले ग्राहक वर्ग। यह भेद केवल पाठ्यपुस्तकीय शब्दावली नहीं है। गलत कार्य चुनने पर टीम सही तकनीक लागू करके भी गलत निर्णय समस्या का समाधान करेगी। लेखक पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित अधिगम के अंतर को भी इसी आधार पर रखते हैं। पर्यवेक्षित स्थिति में लक्ष्य परिणाम पहले से ज्ञात होता है और मॉडल उसे अनुमानित करना सीखता है। अपर्यवेक्षित स्थिति में लक्ष्य लेबल नहीं होता, इसलिए विश्लेषण पैटर्न और संरचना खोजता है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि किसी तकनीक की लोकप्रियता देखकर उसे न अपनाएं। पहले तय करें कि निर्णय क्या है, परिणाम किस रूप में चाहिए और उपलब्ध डेटा उस प्रश्न का उत्तर दे भी सकता है या नहीं। चौथा, ओवरफिटिंग से बचाव और मॉडल की वास्तविक दुनिया में जांच। डेटा विज्ञान में एक प्रमुख जोखिम यह है कि मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करे लेकिन नए मामलों पर विफल हो जाए। पुस्तक इसे ओवरफिटिंग के माध्यम से समझाती है। अत्यधिक जटिल मॉडल कभी कभी डेटा में मौजूद अस्थायी शोर या संयोगों को भी नियम मान लेता है। परिणाम स्वरूप वह पुराने उदाहरणों को लगभग याद कर लेता है पर भविष्य के लिए भरोसेमंद सामान्यीकरण नहीं कर पाता। इसलिए केवल प्रशिक्षण सटीकता को सफलता का प्रमाण मानना गलत है। लेखक अलग रखे गए परीक्षण डेटा पर मूल्यांकन की आवश्यकता बताते हैं ताकि मॉडल को उन उदाहरणों पर परखा जाए जिन्हें उसने सीखते समय नहीं देखा था। वे जटिलता और सामान्यीकरण के बीच संतुलन पर भी ध्यान दिलाते हैं। अधिक विशेषताओं, अधिक नियमों या अधिक लचीले मॉडल से हमेशा बेहतर निर्णय नहीं निकलते। व्यावसायिक संदर्भ में यह सावधानी और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत अनुमान का असर बजट, ग्राहक अनुभव या जोखिम प्रबंधन पर पड़ सकता है। पुस्तक पायलट अध्ययन और अस्थायी प्रोटोटाइप को उपयोगी मानती है। ऐसे प्रयोग संगठन को कम जोखिम में यह सीखने देते हैं कि डेटा पर्याप्त है या नहीं, मॉडल व्यवहार्य है या नहीं और समाधान को उत्पादन प्रणाली में ले जाने से पहले किन व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना होगा। अंत में सटीकता से आगे भ्रम मैट्रिक्स और अपेक्षित मूल्य से निर्णय का मूल्यांकन। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि किसी भविष्यवाणी मॉडल की सटीकता अकेले पर्याप्त मापदंड नहीं है। कई व्यावसायिक स्थितियों में दो प्रकार की गलतियों की लागत समान नहीं होती। धोखाधड़ी पहचान में वास्तविक धोखाधड़ी को ना पकड़ना गंभीर नुकसान दे सकता है जबकि कुछ वैध लेन देन को जांच के लिए भेजना तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला हो सकता है। इसी तरह ग्राहक संरक्षण अभियान में हर संभावित ग्राहक को छूट देना महंगा हो सकता है। भ्रम मैट्रिक्स सही और गलत भविष्यवाणियों को अधिक अर्थपूर्ण श्रेणियों में बांटकर यह देखने देता है कि मॉडल किस प्रकार की त्रुटियां कर रहा है। इसके बाद अपेक्षित मूल्य का ढांचा मॉडल के परिणामों को लागत, लाभ और उपलब्ध कार्रवाई से जोड़ता है। इससे प्रश्न बदलता है। उद्देश्य सबसे अधिक प्रतिशत सही भविष्यवाणियां पाना नहीं बल्कि उपलब्ध संसाधनों के भीतर सबसे अधिक व्यावसायिक मूल्य पैदा करना होता है। किसी मॉडल की सीमा तय करना भी इसी सोच से जुड़ता है। उदाहरणतः केवल सबसे उच्च जोखिम वाले मामलों पर कार्रवाई करना सभी मामलों पर कार्रवाई करने से अधिक लाभकारी हो सकता है। यह अध्याय तकनीकी मूल्यांकन को प्रबंधकीय निर्णय से जोड़ता है और दिखाता है कि अच्छा मॉडल वह है जो संगठन के वास्तविक उद्देश्यों के अनुसार उपयोगी परिणाम दे। निष्कर्ष में डेटा साइंस फॉर बिजनेस उन प्रबंधकों, उत्पाद प्रमुखों, बिजनेस विश्लेषकों, उद्यमियों और उभरते डेटा वैज्ञानिकों के लिए विशेष उपयोगी है जिन्हें डेटा विज्ञान परियोजनाओं को समझना, प्रस्तावित करना या संचालित करना है। यह उन पाठकों के लिए कम उपयुक्त है जो पायथन, विशिष्ट मशीन लर्निंग लाइब्रेरी या उन्नत गणित का चरणबद्ध प्रशिक्षण चाहते हैं। इसकी उपयोगिता तकनीकी सूत्रों से अधिक निर्णय की गुणवत्ता में है। पाठक सीखता है कि परियोजना शुरू होने से पहले किन प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहिए, किस प्रकार के डेटा माइनिंग कार्य का चयन करना चाहिए और किसी मॉडल की उपयोगिता को व्यावसायिक लागत तथा लाभ के आधार पर कैसे परखना चाहिए। पुस्तक यह भी व्यावहारिक समझ देती है कि डेटा वैज्ञानिक, डेटा इंजीनियर और व्यावसायिक हितधारक अलग भूमिकाएं निभाते हैं। फिर भी साझा भाषा के बिना परियोजना सफल नहीं हो सकती। समान श्रेणी की कई पुस्तकों में या तो तकनीकी विधियों का विस्तृत गणित मिलता है या डेटा आधारित परिवर्तन पर बहुत सामान्य प्रबंधन सलाह। यह पुस्तक इन दोनों के बीच एक स्पष्ट स्थान बनाती है। यह तकनीकी अवधारणाओं को इतना खोलती है कि गैर तकनीकी नेता उनका गलत अर्थ ना निकालें पर उन्हें अनावश्यक प्रोग्रामिंग विवरण में नहीं डुबोती। ओवरफिटिंग, परीक्षण डेटा, भ्रम मैट्रिक्स और अपेक्षित मूल्य जैसे विचारों को व्यवसाय की कार्रवाई से जोड़ना इसकी स्थायी विशेषता है। इसलिए यह डेटा विज्ञान को फैशन या केवल उपकरणों के संग्रह के रूप में नहीं बल्कि प्रमाण आधारित निर्णय लेने की संगठनीय क्षमता के रूप में समझने के लिए मजबूत आधार प्रदान कर दिए। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फॉस्टर प्रोवोस्ट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।